केवल ज्ञान पानी।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी के सामने ये जो बाहर फैला हुआ जगत का विस्तार दिखाई पड़ता है, जिसमें हम अपने जीवन यापन के लिए साधन जुटाते हैं, सुख सुविधा की चीजें इकट्ठी करते हैं, पर चाहते यही हैं कि मुझे आत्म सुख और आत्म शांति मिले। पर इस बाह्य जगत में जहाँ इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति के साधन इकट्ठे करता है जीव, और पूरा जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है, पर फिर भी आत्म सुख और आत्म शांति से वंचित रह जाता है, उसे वो प्राप्त नहीं हो पाती। एक और जगत है जो कि दिखाई नहीं पड़ता, जहां हम कभी ढूंढते भी नहीं है कि वहां भी सुख मिल सकता है, वहां भी शांति मिल सकती है। जहां ढूंढते हैं वहां है नहीं, इसलिए मिलती भी नहीं। जहां है वहां ढूंढते नहीं, इसलिए मिलती नहीं। दोनों तरह से हम उस सुख और शांति से वंचित रह जाते हैं। पुरुषार्थ निरंतर करते हैं, लेकिन प्रतिफल जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण एक ही समझ में आता है कि हमारे भीतर वो दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई जो ये देख सके, या जिस दृष्टि के प्राप्त होने से हम ये देख सकें कि वास्तव में मुझे आत्म सुख और शांति कहां मिलेगी। अपने जीवन के अनुभव से भी हम ये शिक्षा नहीं ले पाते हैं कि कहां कहां तो हमने उस सुख और शांति को पाने के लिए खोज की है, प्रयत्न किया है, और पूरी जिंदगी उसी में व्यतीत हो गई, और मुझे किसी और दिशा में कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम। हम तो ये सोचते हैं कि शायद हमारे ढूंढने का ढंग कुछ और होना चाहिए। ढूंढने की जगह नहीं बदलते हम, हम सोचते हैं कि ढूंढने का हम ढंग बदलेंगे तो शायद मिल जाएगी। जैसे किसी के आंख ना हो और नाना प्रकार के चश्मे बदल बदल के पहने और इस भ्रम में रहे कि मुझे तो कोई ऐसा चश्मा मिल जाएगा जिससे कि मैं देख पाऊंगा, तो हम उससे कहेंगे कि मूर्ख है, आंख का इलाज करवाता नहीं है, चश्मा बदलता है। लेकिन अपने आप को मूर्ख कहना और दूसरे से कहलवाना, ये तो बहुत कठिन है। भले ही हमारे जीवन में हम गैर बुद्धिमानी के काम करते रहते हैं, जहां नहीं है सुख और शांति, वहां चीजें बदल बदल के कि शायद इसमें मिलेगी, शायद इसमें मिलेगी, खोजते रहते हैं, और अंततः निराश होकर के जीवन से विदा लेते हैं कि ढूंढा तो बहुत था पर मिली नहीं वो शांति, वो सुख। भाई, ये जो आध्यात्मिक अंधापन है वो कौन दूर करेगा? ये जो भौतिक जगत में हम आंख खोल करके सुख सुविधा के साधन जुटा करके आत्म शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो भौतिक जगत में खुली हुई आंख हमें आत्म शांति में दिलाने में सक्षम है, या कि आध्यात्मिक जगत में जब तक हम अपनी आंख नहीं खोलेंगे तब तक हमें वो आत्म शांति नहीं मिलेगी? ऐसा कहीं कोई भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है या नहीं होता है? होना तो चाहिए। आचार्य महाराज ने 1975 का फिरोजाबाद का चतुर्मास करने के बाद, नहीं 1975 का फिरोजाबाद का चतुर्मास करने से पहले जब जयपुर में कुछ दिन प्रवास किया, तब वहां पर उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि एक सऊदी अरब से जहां पानी की बात कमी होती है वहां से एक व्यक्ति भारत आया। एक बहुत बड़े होटल में वो रुका। जब वो स्नान करने के लिए पहुंचा तो बड़ा चकित हुआ। उसे समझाया गया बाद में, पर पहले तो उससे ये लगा कि इस स्नान घर में जहां की पानी की बाल्टी भी नहीं भरी रखी है, स्नान कैसे करूंगा। तो उसको समझाया गया कि ये जो लगा हुआ है ना पॉटी, हाँ ये इसमें से आता पानी। उसने भी देखा नहीं था ऐसा, वहां पर पॉटी वोटी का सिस्टम नहीं था। उसने कहा अद्भुत, खोल के देखा है तो वाकई में उसमें से पानी आने लगा। उसने कहा जाओ मैं नहा लूंगा, और उसने खूब आनंद से नहाया। वहां तो वो हफ्ते में एक आध बार थोड़े पानी से नहाता था। उसने तो कहा कि मजा आ गया, ये तो ये टोटी कमाल की चीज है, इसको खोलो तो फौरन इसमें से पानी निकलता है। तो उसने मनी मन कमरे में आकर के प्लान कर लिया। जो वहां का नौकर था उसको बुलाया, जिसने उसे समझाया था कि इस टोटी को खोलने से पानी आता है, तुम घबराओ मत, यहां बिना बाल्टी के नहाया जा सकता है टोटी के नीचे पानी में खड़े होकर के। उसको बुलाया कमरे में, दरवाजा बंद कर लिया। नौकर तो पहले थोड़ा घबराया कि ये आदमी कैसा है, दरवाजा बंद करके कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा मेरे साथ। उसने कहा सुनो घबराओ मत, मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी है, ऐसी वाली जो उस स्नान घर में टोटियां हैं वो मिल सकती क्या। अब समझ में आ गया उसके कि बनाया जा सकता है बुद्धू। अपन को भी जब मौका मिलता है तो अपन भी नहीं छोड़ते किसी को, ये ध्यान रखना। बस मौका मिलना चाहिए, जब तक मौका नहीं मिला तब तक ही ईमानदार, बाकी बेईमानी का मौका मिलते ही साथ नहीं चूकते। आत्म शांति पाने वाला भी इस चीज से विमुख ही है, क्योंकि दृष्टि ही नहीं है। जिसको एक बार वो आत्म शांति पाने की दृष्टि प्राप्त हो जाती, पर वो इन छोटी छोटी सी चीजों में अपना ईमान नहीं खोता, अपना धर्म नहीं खोता। वो ये तो दृष्टि विहीन है हम लोग, जो कि जरा से चार पैसे चार ठीकरे के लिए अपना ईमान दुकान पर खड़े होकर के बेचने तैयार हो जाए कि ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो पैसे से मतलब है। उसने कहा कितनी चाहिए, 100-100 रुपए की एक दिला सकता हूं, है तो बहुत महंगी, जबकि टोटी की कीमत उन दिनों ज्यादा से ज्यादा 10-5 रुपए की, आज की बात अलग है। वो कहता कि वैसे तो मिट्टी महंगी है, 100-100 रुपए की एक दिला सकता हूं। तो उसने कहा सुनो एक डजन 12 टोटियां तो मुझे लाके दे, रात के अंधेरे में सौदा हो गया, 1200 रुपये में 12 टोटी खरीद करके सूटकेस में जमा के रख ली। मनी मन बड़ा खुश है, अब जाऊंगा अपने देश, लोगों को दिखाऊंगा कि तरसते हो पानी के लिए, लाया हूं मैं इंतजाम सब। हाँ अब रात में जब ट्रेन से वो जाने लगा तो उसने सोचा कि देखें तो अभी जैसे मुझे पानी पीना हो तो मैं निकाल के देखता हूं, क्यों उठ करके जाऊं मैं वहां पानी देने के लिए, मेरे पास तो साधन है। फौरन सूटकेस खोला, उसने एक टोटी खोली, कुछ नहीं आया उसमें से टोटी में से, शायद गड़बड़ हो गई हो, धोखे से दूसरी कोई आ गई हो, अपने पास तो बारह है। सब टोटियां खोल खोल करके देखी, बाजू में जो ट्रेन में सफर कर रहा था साथ में, समझ गया वो कि बन गया बुद्धू। बहुत दुखी हुआ जब 12 की 12 टोटियां बाल्टियां खोलने पर भी पानी नहीं मिला, निराश हो गया कि ये कैसा देश है, यहां के लोगों ने मेरे साथ इतना धोखा किया। और जो उसके मुंह से निकला कि मैं तो इस देश को बहुत अच्छा समझता था, ये देश मुझे धोखा देने वाला निकला, तब बाजू वाले ने समझाया कि जनाब आप धोखे में हैं, आपको किसी ने धोखा नहीं दिया है। टोटी में जो पानी आता है वो तो ऊपर टंकी में भरा हुआ है, तो टोटी में से आता है, आपको भ्रम हो गया कि पानी टोटी में ही है। उसके तो जल्दी समझ में आ गई थी, अपन में से तो कई लोगों को जिंदगी निकल जाने तक तो समझ में नहीं आती कि सुख तो भीतर मिलता है। ये नाना प्रकार की जो मैंने सुख की टोटियों का इंतजाम करके रखा है, एक टोटी मेरा मकान, एक टोटी मेरी दुकान, एक टोटी मेरा सामान, कितनी टोटियां खरीद रखी है मैंने, जिनमें से मैं सोचता हूं कि मिलेगा मुझे सुख, मिलेगी मुझे आत्मशांति, आज तक नहीं मिली। मिलती तो कहां से मिलती, मेरे अपने भीतर है वो। मैंने मान लिया है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, चीजों में सुख नहीं है, मेरी अपनी मान्यता में है। और जिस दिन मैं इन चीजों में सुख ना मान करके ये याद करूं कि जब मेरे ही भीतर है तो इन चीजों को माध्यम क्यों बनाऊं, मैं उसे इन चीजों के पराधीन होकर के प्राप्त कर ही नहीं सकता। मैं जितना स्वाधीन हो जाऊंगा उतना सुख मैं अपने भीतर, उतनी शांति मैं अपने भीतर प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन आंख खुलना बहुत आसान नहीं है, ये चर्म चक्षु ये तो खुल जाते हैं जन्म लेते ही, अधिकांश लोगों के दिखने लगता है संसार, लेकिन भीतर की आंख खुलना बहुत कठिन है। वो खुल जावे तो फिर जीवन में आत्म सुख और शांति अपने आप बरसने लगती है, कहीं और अन्यत्र अपने से पृथक उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो कहते हैं लोग कि ज्योतिषी अपने आप चल करके आए उस बालक का भविष्य बताने के लिए। राजा ने विरुचि ली और कहा बनाओ ज्योतिषी, बनाओ मेरे इस बालक की जन्म पत्री, कैसे हैं इसके ग्रह नक्षत्र। उन्होंने कहा कि बहुत महान आत्मा बनेगा, बहुत अच्छा, जीवन भर मेरे साथ रहेगा। नहीं महाराज, जिस दिन इसकी आंख खुल जाएगी उस दिन ये संसार से विदा ले लेगा। अरे मुझे छोड़ के चला जाएगा, सबको छोड़ के चला जाएगा, राजपाट भी और आपको भी, तो क्या मेरे बेटे की आंख नहीं खुलेगी, क्या मेरा बेटा जन्म से ही अंधा रहेगा क्या। नहीं नहीं राजन, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसकी दोनों आंखें संसार को देखेंगी, लेकिन जिस दिन उसके भीतर की आंख खुल जाएगी उस दिन वो आपको राजपाट को छोड़ करके चला जाएगा। आया राजा के समझ में, उन्होंने कहा ज्योतिषियों जाओ, मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इंतजाम करो जिससे कि इस बालक की भीतर की आंख न खुल पाए। हां, क्योंकि अगर भीतर की आंख खुल गई तो राजपाट वैभव और अपने माता पिता को भी छोड़ के चला जाए। आज वर्तमान में तो भौतिक सुखों की आंख खुली रहती है तो अपने घर द्वार को और अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते, वे कभी महान नहीं बनते, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप ये सोचो कि उनकी भी आंख खुल गई है जो माता पिता को छोड़ करके और अपना सब घर द्वार छोड़ करके अन्यत्र कहीं नौकरी पाने के लिए चले गए 10-20-50 हजार रुपए की। ये तो भीतर की आंख खुलने पर जब राजपाट वैभव और सब संसार व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है, उन लोगों की आंख खुली हुई मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब इसका इंतजाम क्या किया जाए, एक्सपर्ट्स बुलाए गए कि बताओ क्या उपाय किया जाए। तो एक्सपर्ट्स ने आकर के कहा कि तीन बात आसान उपाय है। पहली चीज, इस बालक को कभी कोई दीनहीन दरिद्र और दुखी व्यक्ति दिखाई ना पड़े, क्योंकि दुख देख करके इसकी संवेदनशीलता इतनी है कि इसकी भीतरी आंख खुल जाएगी। दूसरा उपाय है कि इसे कोई भी मृत व्यक्ति दिखाई ना पड़े, वरना इसकी संवेदनशीलता इतनी है कि यह संसार से मुख मोड़ लेगा। और तीसरी चीज, इसे अपने बारे में सोचने का समय मत देना, वरना अगर ये अपने बारे में सोचने लगेगा तो आंख खुल जाएगी। तीन उपाय हैं। राजा ने कहा बहुत अच्छा, इंतजाम कर दिया गया राजमहल में, कहीं बाहर नहीं जा सकते, भीतर भीतर कोई दीनहीन दरिद्र वृद्ध नहीं आ सकता सेवा में, सबसे सुंदर स्वस्थ व्यक्ति ही उसके चारों तरफ लगा दिए गए, और किसी की मृत देह दिखाई पड़ने का तो सवाल ही नहीं है, और अपने बारे सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि इंटरटेन के मनोरंजन के साधन शराब जुआ जो भी हो सकता है वो सब चारों तरफ इंतजाम कर दिया गया। अब नहीं खुल सकती आंख, लेकिन जिसकी खुलना होती है वो इस सारे इंतजाम के बावजूद भी खुल जाती, ये ध्यान रखना। हम सबने भी हमारी आंख न खुल पाए इसके इंतजाम कर रखे हैं, यही सब इंतजाम। दीनहीन और दुखी को देख करके हमारी संवेदनशीलता जागृत ना हो, इसलिए बचपन से दीनहीन और गरीब के प्रति हमारी संवेदनशीलता को नष्ट किया जाता है। कैसे? अरे ऐसे तो संसार में बहुत घूमते फिरते हैं, इनके चक्कर मत आना तुम, ये बनते हैं, ऐसा कह के बचपन से दान वान मत देना इनको, भिखारी को गरीब को आने पर उनकी भी गलती है कि उन्होंने हमारी संवेदनशीलता पर कुठाराघात किया है, दीनहीन नहीं होने के बाद भी वैसा व्यक्त करके, इसलिए हमारा विश्वास भी उठ गया है, हमारी संवेदनशीलता अब दीनहीन गरीब के प्रति अब उतनी नहीं रही है। मृत देह देख करके हम फौरन समझाते हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत बूढ़े हो गए थे, सो मर गए, ऐसे सब कोई थोड़ी मरा, ऐसा हम समझा करके बचपन में तो मुझे याद है कि मरघट नहीं ले जाते थे, क्योंकि किसी को जलते हुए देख करके छोटा सा बच्चा हो सकता है कि आंख खुल जाए और संसार से व्यक्त हो जाए, इसलिए थोड़ा समझदार होने पर, समझदार मतलब बाहर के धक्के खा लेने पर, संवेदनशीलता मथुरी हो जाने पर फिर ले जाते हैं। जब वो सीख जाता है कि ठीक है ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, और घर में सुख सुविधा के साधन इतने हैं, अभी एक बच्चे का पत्र आया है मेरे पास कि क्या हम सबके लिए एक संदेश देना पसंद नहीं करेंगे कि जिन जिन के घरों में पढ़ने वाले बच्चों को पुरस्कार मिला है, कम से कम उन परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ चार बातें दिन भर में धर्म की भी तो किया करें। ये शुरुआत हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने देखा आज घरों में
माता पिता को अपने बच्चों के साथ धर्म की बातें शेयर करने का वक्त नहीं है। अगर हम वास्तव में आने वाली युवा पीढ़ी में कुछ धार्मिक चेतना जागृत करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा उपाय है कि माता पिता दिन भर में 2 मिनट 5 मिनट का समय निकालें, अपने बाबत अपने आत्मकल्याण के बाबत सबके साथ बैठ करके बात करें। शायद यही चीज थी कि अपने बाबत विचार करने का अवसर नहीं मिलेगा तो आंख नहीं खुल पाएगी, और हमें दिन भर में कभी अवसर नहीं मिलता अपने जीवन के कल्याण के बारे में प्रयोजन भूत तत्व के जानने का वक्त नहीं हमारे पास। अप्रयोजनीय सारे संसार की चीजें जानने के लिए सुबह के पेपर का इतनी बेसब्री से इंतजार होता है जितने की और किसी चीज का नहीं होता होगा। और काश वैसा ही सबसे पहले इंतजार होता कि मैं जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करके अपने आत्मा स्वरूप की खबर तो ले लूं, या कि जिनवानी माँ का एक पन्ना पलट करके 4 लाइनें अपने कल्याण की तो पढ़ लूं। ये नहीं है, वो पेपर के पन्ने बिल्कुल सुबह से हाथ में होना ही चाहिए। उसमें कहीं कोई आत्म कल्याण की बात लिखी हो बहुत मुश्किल है। पेपर बेचने वाला दुखी ना हो मेरे ऐसा कहने से, मैं उसकी रोजी रोटी पर कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी हम बेसब्री से उन खबरों का इंतजार करते हैं उतनी ही अपने जीवन की खबर लेने की बेसब्री है कि नहीं है? नहीं है अगर तो आंख नहीं खुल पाएगी, पूरी जिंदगी नहीं खुल पाती आंख। आध्यात्मिक अंधापन पूरी जिंदगी बना रहता है। हम सबके साथ यही घटित हो रहा है, और तीनों इंतजाम कर दिए गए। युवावस्था आ गई, गौतम बुद्ध अपने महल में सारे ठाट बाट सुरा और सुंदरी के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि आज की पीढ़ी भी उसी दिशा में जा रही है। 80% लोग जिनके बारे में हमें खोज खबर लेने तक की चिंता नहीं है, वक्त नहीं है, किस दिशा में जा रहे हैं, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि और अच्छा। ऐसा ना हो कि महाराजों के सानिध्य में आकर के व्यक्त हो जाए, चिंतित हो जाते हैं लोग। रात 12 बजे अगर बेटा शराब पीकर के घर लौटता है तो कोई घर का व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, चुपचाप दरवाजा खोल देता है और बच्चे को भीतर जाने देता है। लेकिन अगर 11 बजे महाराज के पैर बना के लौटा होगा तो 2-4 दिन सब्र धारण करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि कह भैया और घर के काम नहीं का महाराज ही खुआ गए हैं, अब तक छोड़ो घर को भी करो करे जी, 12-12 बजे तक लौटते हो तुम। ये है हमारी अपनी स्थिति संसार की। पतन की तरफ जाने वालों को आज संसार में कोई नहीं टोकने वाला, सच्चे रास्ते पर चलने वाले की हंसी उड़ाने वाले और उसकी बदनामी करने वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे। चारित्रहीन व्यक्ति पर कोई चारित्रहीनता का दोष नहीं लगाता, लेकिन चारित्रवान पर ही चारित्रहीनता का दोष लगाने वाले लोग हैं। ये है हमारी दृष्टि, ये है हमारा आध्यात्मिक अंधापन। बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा, अच्छा लगना चाहिए कि हां सचमुच हम कहां कमजोर हैं, कहां हमारी गलती है। ये बात ठीक है कि हम ना बदल पाए अपने आप को, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन बदलने का हमारे मन में विचार तो होना चाहिए। ना निकाल पाए अपने जीवन की कमजोरियां, लेकिन अपनी कमजोरियों को जानने का हमारे अंदर साहस तो होना चाहिए। नहीं पहुंच पाएंगे हम अपने चेहरे की काले, लेकिन दर्पण देखना तो नहीं छोड़ देंगे। दर्पण देखेंगे, देखेंगे कि मेरे चेहरे पर काले कितनी लगी हुई है। मैं नहीं छुटा पा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम तो रहे। जिनवाणी भगवान और गुरुजन दर्पण की तरह हम इन तीनों की मदद से भी अपनी आंख ना खोल पाए तो ये हमारी कमी है, हमारी अपनी कमजोरी है। और 20 वर्ष की उम्र में एक दिन अचानक संदेश मिलता है कि युवाओं की एक गोष्ठी, युवाओं का एक सम्मेलन होना है जिसमें गौतम बुद्ध का आना अनिवार्य है। राजा को भी एक बार लगा कि 20 वर्ष का संस्कार मैंने इतना जबरदस्त डाला है कि अब इसकी आंख नहीं खुल पाएगी, युवाओं की सभा में इसे भेज देना चाहिए। और रथ में सवार होकर के बुद्ध चले जा रहे हैं। रास्ते में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि कोई भी दीनहीन गरीब सामने ना आए, कोई भी मृत देह सामने ना आए, सारे इंतजाम कर दिए गए। सभा स्थल तक राजमहल से लेकर के सैनिक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। रथ जिस दीर्घा से, जिस बीथी से, जिस मार्ग से गुजरेगा वहां सब इंतजाम है। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं चौराहे पर कहां से एक जर्जर दीनहीन वृद्ध दिखाई पड़ गया। और जैसे ही दृष्टि गई, आज तक वैसा कोई देखा नहीं था मनुष्य, इसलिए और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई रथ में बैठे हुए बुद्ध के अंदर। कौन से पूछे? सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है? मनुष्य को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रथम ध्यान आ गया कि राजकुमार की गलती नहीं है, इनको कभी ऐसे व्यक्ति को देखने की अवसर ही नहीं मिला। इसने पूर्वक कहा कि हां राजकुमार, ये मनुष्य है। मैं पूछना चाहता हूं सारथी, क्या हर मनुष्य की ये अवस्था होती है? दूसरा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। ऐसा नहीं समझना, अपन को चूंकि मालूम है, अपन ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। बुद्ध तो स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे ही उसने कहा कि राजकुमार, सब मनुष्यों की यही अवस्था होती है, अब छटपटाहट भीतर मच गई। 20 साल के अत्यंत सुंदर युवक के भीतर सारथी ठहरो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति से मुझे भी गुजरना पड़ेगा? अब सारथी बहुत मुश्किल में है, क्या जवाब दे राजकुमार को, नाराज ना हो जाए। सिर झुका करके रथ की बलगाएं हाथ में थामे हुए धीरे से कहा कि हां राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं है, आपके साथ भी ऐसा ही घटित होगा। तब तुरंत निर्णय ले लिया, हम और आप जैसे निर्णय में देर करने वाले लोग नहीं थे उस जमाने में। तुरंत निर्णय ले लिया कि बस अगर ये वृद्धावस्था मेरी भी आएगी तो अभी मेरा युवक होना व्यर्थ हो गया, मैं भी मानो उतना ही वृद्ध हो गया। ठहरो सारथी, अब युवाओं के सम्मेलन में जाने की आवश्यकता नहीं है, रथ मोड़ दो। राजकुमार की आज्ञा का पालन करना सारथी की मजबूरी है। व्यवस्थाएं सब भंग हो गई, रथ पीछे की तरफ मोड़ा तो पीछे तो बहुत सारी अर्थियां रोक के रखी गई थी, क्योंकि रोज इतने बड़े शहर में कितने लोग मरते हैं। और जैसे ही एक अर्थी जिसमें कि चेहरा खुला हुआ है, माता की सारा सारी देह ढकी है, चार लोग जिसको कंधे पर लिए जा रहे हैं, अत्यंत चकित हैं बुद्ध। ये कौन है सारथी? मनुष्य है राजकुमार, मनुष्य है। ये ऐसा क्यों लेटा हुआ है? राजकुमार, इसका प्राणांत हो गया क्या? हर मनुष्य इसी तरह से मरण को प्राप्त होता है? बहुत मुश्किल में डाल दिया। हाँ, हर मनुष्य इसी तरह मरण को प्राप्त होता है। सारथी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं भी इसी तरह से मरण को प्राप्त होऊंगा? ऐसा अपन नहीं पूछ पाते, ऐसा कोई विरले जिसकी आंख खुलना हो वही पूछता है। अपन को तो ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं, रोज देखते हैं, अपनी संवेदनशीलता इतनी नौकरी हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मुझे याद है कि जब भूकंप में गुजरात में लोग मर रहे थे, 26 जनवरी के दिन आया था, तब किसी को कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था, किसी की आंख में भीगी थी, सिर्फ कुछ लोग चिंतित थे जिनके अपने वहां गुजरात में थे। फोन करके सारे गुजरात की हालत कोई नहीं पूछ रहा था, वो उनका क्या हुआ? वो जो अपने वो वहां थे, उन वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, बस तो फिर सब ठीक है, रख दो, कुछ नहीं हुआ। ये है हमारी अपनी संवेदनशीलता, ये है हमारी अपनी भीतरी आंख नहीं खुलने की दशा। और जैसे ही ये प्रश्न पूछा कि मुझे भी मर जाना पड़ेगा, और सारथी कुछ नहीं कह सका, सिर नीचा कर लिया, तो कहते हैं कि बुद्ध रथ से नीचे उतर गए, मानो कि मेरे सम्मुख ही मरण आ गया और मैं अभी तक इतना निश्चिंत होकर जीवन दे रहा हूं और मरण मेरे सामने। पैदल पैदल सब हड़बड़ा रहे हैं, क्या जवाब देंगे राजन को, और चले जा रहे हैं राजमहल में। सबको अनदेखा करके अपने महल के ऊपर की छत पर यहां से वहां, वहां से वहां चहलकदमी कर रहे हैं, विचार मग्न है। यहां हर मनुष्य को दीनहीन और वृद्ध हो जाना पड़ता है, यहां हर मनुष्य को मरना पड़ता है। अरे तो फिर ऐसा क्या है जीवन में जिसमें कि बुढ़ापा ना आए, जिसमें मरना ना पड़े? जन्म जरा और मृत्यु से बचने का कोई उपाय हो सकता है? आप खुल गई? अपन को तो रोज ये चीज ज्ञात है, रोज सुनते हैं, जन्म जरा मृत्यु नाशना है, जन्म निर्कांति स्वाहा। पूजा करके आए? पूजा बहुत अच्छा, पूजा करके आए, लेकिन जन्म जरा और मरण से बचने का कोई उपाय नहीं किया, अकेले जल चढ़ाया, उपाय कुछ भी नहीं किया। ये इतना सा उपाय, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो सिर्फ आदत डालने के लिए था कि शायद कभी इस आदत के चलते याद आ जाए कि हां वास्तव में मुझे उपाय भी करना है जन्म जरा मृत्यु से बचने का। भीतर की आंख जिसकी खुल जाती है, वो फिर इन सब चीजों के बीच भी अपनी आत्म शांति और आत्म आनंद पाने के लिए निकल पड़ता है। अपने पास 16 मिनट और है आज के लिए, पर ये नहीं कह सकते कि अगला क्षण भी मेरा है। कह सकते हैं? कोई भरोसा नहीं अगले क्षण सांस पूरी हो जाए, इतनी अनिश्चितता के बावजूद भी अपने कल्याण के लिए एक क्षण नहीं निकाल पाते अपने जीवन में, एक क्षण निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय अपने जीवन के बारे में विचार करने के लिए, अपने आत्म सुख और शांति के उपाय पर विचार करने के लिए। दो छोटी छोटी सी घटनाएं सुनाता हूं कि कैसे मिल सकती है वो आत्म शांति और आत्म संतोष, आत्म सुख। उन्हीं गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है तो शायद बात पूरी समझ में आ जाएगी। जब वे बुद्ध देव भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य पीताश्रय से दीक्षित थे, ये ध्यान रखना, और फिर बाद में भगवान महावीर स्वामी के समान ही उन्होंने निर्ग्रंथ रहकर के तपस्या करी। 6 महीने का उपवास करने के बाद एक दिन कुशीनारा के तट पर अशक्त होकर के गिर गए थे। तब एक 12 वर्ष की बेटी ने उन्हें उठा करके वृक्ष के नीचे लिटा दिया था और खीर लेने घर चली गई थी दौड़ करके। उतने में उनको होश आया था और फिर उन्होंने वो उससे खीर खा करके और सिर्फ इतना ही कहा था कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो मार्ग ठीक नहीं है, बस इतनी ही बात से और इन्होंने मार्ग परिवर्तित कर लिया। वीणा के तार इतने मत खींचो कि टूट जाए और इतने ढीले मत छोड़ो कि संगीत ही ना निकले, इसलिए मध्यम मार्ग। तभी तो लिखा हुआ है कि मैं अपने हाथों से आओ कैसे केशों का उत्पादन करता था, आओ मैं बताता हूं कैसे मैं अपने पानी पात्र में आहार करता था, लेकिन वह मार्ग योग नहीं है, बस यहां से गड़बड़ी हुई थी, मध्यम मार्ग यहां से शुरू हुआ था। और फिर वे ही गौतम बुद्ध उस अपने तपस्या के काल में एक स्थान से गुजर रहे थे। मैंने आपको ये बीच में बताना इसलिए जरूरी समझा, पता नहीं आप मेरी इस बात का क्या अर्थ लेंगे, इसलिए जो श्रेष्ठ है वो ले लेना चाहिए, बाकी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। रास्ते से जाते समय लोगों ने कहा कि महाराज आप वहां से ना जाएं, वहां एक अंगुलीमाल नाम का बहुत खूंखार व्यक्ति रहता है, खतरनाक है उसके पास से गुजरना। बुद्ध ने कहा कि क्या करता है? महाराज लोगों को लूट लेता है, मेरे पास तो लूटने लायक कुछ है ही नहीं। महाराज वो जान से भी मार देता है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, देव को मारे तो मारे। महाराज ये फिलॉसफी वहां काम नहीं आएगी, आप मत जाइएगा। तब तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं उसे बता दूंगा कि इस देह के मरने से मैं नहीं मरता, सामान के लुट जाने से मेरी निजी संपदा नहीं लुटती, मैं उसे बताने जरूर जाऊंगा, उसे तो बहुत जरूरत है इस चीज की। तुम सबको तो ये मालूम है लेकिन वो अज्ञानी है, उसे नहीं मालूम, उसके पास तो मेरा जाना जरूरी है। तब चले गए। उस रास्ते से जा रहे हैं और उतने में अंगुलीमाल ने देखा कि कोई बात सुंदर शमन चला रहा है। अंगुलीमाल पहले लूटता था पर जान से नहीं मारता था, अंगुलियां निकाल लेता था 10 हाथ में की, और उनकी माला बना करके अपने गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। अब जैसे ही बुद्ध उस रास्ते से निकलते अंगुलीमाल आवाज देता कि ठहरो शमन, तो बुद्ध ठहर करके आवाज देते हैं कि तुम्हारे लिए ही तो आया हूं, तो भाग करके आता है, कहता कि आपको भय नहीं लगता मेरा, मेरे बारे में आपको मालूम नहीं है। बोले तुम्हारे बारे में मुझे मालूम था इसलिए तो आया हूं। क्या मालूम है आपको मेरे बारे में? मुझे मालूम पड़ा है कि तुम बहुत बलवान हो। खुश हो गया अंगुली माल कि ठीक मालूम पड़ा कि मैं बहुत बलवान हूं। और क्या मालूम पड़ा? श्रमण। और ये मालूम पड़ा कि तुम लोगों को लूट लेते हो, उनको जान से तो नहीं मारते, उनकी अंगुलियां निकाल लेते हो। सचमुच तुम बहुत बलवान हो। मैंने सोचा कि एक ना एक दिन तो ये देह छूटनी ही है, मैं किसी बलवान के हाथों मरूं तो मेरा सौभाग्य, इसलिए आया हूं। अब तो चकित हो गया हूं, आप अपने आप मरना चाहते मेरे हाथों? बुद्ध ने कहा कि हां, तुम्हारे बल को मैं पहले लेकिन देख लूंगा कि सचमुच तुम बलवान हो कि नहीं। तो कैसे जानोगे कि मैं बलवान हूं कि नहीं? एक काम कर दो, बोलो शमन, वो जो सामने पेड़ लगा हुआ है उसमें से दो पत्तियां तोड़ करके तलाओ। अरे जोर से हंसा अंगुली माल की, मुझे बुद्धू बनाते हो, जब तक भाग जाओगे तुम, मैं जब तक पत्तियां तोड़ने चलूंगा। और इसमें कौन सा, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा। नहीं नहीं अंगुली माल, मैं तो तुमसे ही ये काम करवाना चाहता हूं, तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे हाथ पैर बांध करके और तुम मुझे यहीं डाल दो, मैं भागूंगा नहीं, आया ही तुम्हारे पास। अंगुली माल ने विश्वास कर लिया और जाकर के फट से एक झटके में दो चार तो पत्तियां तोड़ करके लाया, ये लो शमन। अंगुली माल, सचमुच तुम बहुत बलवान हो, देख लिया मैंने तुम्हारा बल, कितने आसानी से तुमने पत्तियां तोड़ दी। अंगुलीमाल, आधा काम और शेष है, जाओ तो इन पत्तियों को ज्यों का त्यों उस वृक्ष के ऊपर लगा के। कुछ जागृत होने लगा, विनय भाव आ गया। शमन, मैं जानना चाहता हूं ये जोड़ने का उपाय कैसे जोड़ा जाता होगा, आप जानते हैं क्या? जानता हूं अंगुली माल, जोड़ना जानता हूं। क्या वो सामर्थ मुझे मिल सकती है? मिल सकती है अंगुली माल। क्या करना होगा? आओ मेरे साथ। और हाथ में कटोरा है, भिक्षा पात्र, चीवर है, जो भी भिक्षु का वेश है वो धारण करके अंगुली माल बुद्ध के साथ हो गया। अब गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो लोग चकित हैं, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अगले दिन बुद्ध कहते हैं कि जाओ गांव में भिक्षा के लिए जाओ। अंगुली माल भिक्षा के लिए जब अकेला जाता है तब भी लोग बहुत भयभीत हैं, कोई भिक्षा देने नहीं आता। दूसरा दिन, तीसरा दिन, और अब तो जैसे ही अंगुली माल दिखाई पड़ता है लोगों ने अपने घरों की छत के ऊपर पत्थर इकट्ठे करके रखे हैं तो फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं, थूकते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सब ओर से इतने पत्थर बरसाए गए कि भिक्षु बना हुआ अंगुली माल लहू लुहान होकर के नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, बुद्ध तो इसी के इंतजार में थे, फौरन आकर के खड़े हो गए और जैसे ही बुद्ध को सेवा करते देखा अंगुली माल की, सब अपने घरों के दरवाजे खोल खोल करके बाहर आने लगे और घेर करके खड़े हो गए। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए कि गौतम बुद्ध स्वयं कंगली मान की सेवा कर रहे हैं, हमने जिसे लहू लुहान कर दिया, भिक्षा भी नहीं दी, 3 दिन से भूख प्यास की वजह से निराल हो गई देह, अब बड़ा मुश्किल अंगुली माल को बुद्ध होश में लाते हैं, और जैसी अंगुली माल को होश में लाते हैं तो कहते हैं अंगुली माल अब तुम बहुत सामर्थ्यवान हो गए, तुमने कहा था ना कि मैं जोड़ना सीखना चाहता हूं, तुम जोड़ना सीख गए हो, आंख उठा के देखो, जो लोग तुमसे दूर भागते थे अब वे तुम्हारे चारों तरफ जुड़ के खड़े हुए हैं, तुम्हारे आंख खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जब सब और लोगों को देखा तब अंगुली माल की आंखें अपने आप बंद हो गईं, हर्षाश्रु आंखों से बहने लगे, अत्यंत आत्म सुख और आत्म शांति प्राप्त हो गई। मार्ग मिल गया, भाई हमारे लिए अपने आत्म शांति का यह मार्ग कब प्राप्त होगा, कब हमारी आंख खुलेगी, कब हम प्राणी मात्र के प्रति करुणा और संवेदना से भर उठेंगे। जब तक हम प्राणी मात्र के भीतर अपने जैसी ही आत्मा को नहीं देख पाएंगे, जब तक ये दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह समीचीन मार्ग श्रद्धा आत्मज्ञान और सदाचरण का मार्ग हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक वह मार्ग हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें वो आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कोशिश करें अपने भीतर की उस संवेदनशीलता को बढ़ाने की, जिसके चलते हम प्राणी मात्र से जुड़ जाते हैं। प्राणी मात्र से क्या, अपनी ही आत्मा से जुड़ जाते हैं वास्तव में, तभी हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, हमारी आंख खुल गई ये माना जाएगा। आज भावना भाते हैं कि हमारे भीतर ऐसी ही आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जिससे कि हम अपने ही आत्म स्वरूप से जुड़ सकें और अपना कल्याण कर सकें। एक साथ नमोकार मंत्र करेंगे।
Thank you. Thank you.